मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, कैसा हूं, इत्यादि इत्यादि। ये उपासना की महिमा है, भक्ति की महिमा है। इन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया, ना राम को दिया है ना सीता को दिया है। भली भांति जानती हैं ये दोनों कौन है। लक्ष्मण रास्ते मिल गए हैं, वन यात्रा के लिए तैयार, तो उन्हें उपदेश दे दिया, लक्ष्मण तुम मेरे राम के साथ जा रहे हो और जगजननी सीता के साथ जा रहे हो। सर्वप्रथम राम को अपने पिता समान मानना और सीता को मां के समान मानना। कहीं स्वप्न में भी तू राग, रोष, ईर्ष्या, मद एवं मोह के वशीभूत ना होना। स्वप्न में भी लक्ष्मण उसी वक्त निर्णय लेता है, सोऊंगा तो स्वप्न आएगा, यदि सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। 14 वर्ष तक माते मैं नहीं सोऊंगा, ताकि ये स्वप्न की अवस्था ही मेरे ऊपर ना आए। आपने कहा है ना, स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होना, मैं सोऊंगा ही नहीं तो मुझे स्वप्न कहां से आएगा, मैं नहीं सोऊंगा 14 वर्ष तक। मां सुमित्रा अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण को समझाती है, राग से क्या अर्थ है, रोष से क्या अर्थ है, इत्यादि इत्यादि इन सब शब्दों की व्याख्या करती है। बड़े संक्षिप्त रूप से साधक जनों सुनिएगा, व्याख्या करने का बिल्कुल समय नहीं है। राग रहित होना, राग के वशीभूत नहीं होना, मानो तेरे लिए सब कुछ राम है। मुझे भूल जाना, उर्मिला को भूल जाना, मां कुशल्या को याद नहीं करते रहना, दशरथ मर गए हैं उनको याद नहीं कर जाना, मर रहे हैं उनको याद नहीं करना, इन सबको भूल के एक ही है तेरे लिए। लक्ष्मण कहीं जाके कहता भी है, मैं किसी को नहीं जानता महाराज, मेरे सब कुछ आप हो, मेरे माता पिता तात सखा भाई सब कुछ मेरे आप हो, मेरा आप के अतिरिक्त और कोई नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं। ये लक्ष्मण की महिमा है। राग रहित, राग के वशीभूत नहीं होना, कहीं वहां जाके हमारी किसी की याद आ जाए ऐसा स्वप्न में भी ना हो। केवल राम एवं सीता, बस यही है तेरे लिए सब कुछ। तेरा सारा राग, तेरा सारा अनुराग इनके प्रति ही हो, हमारे प्रति लेश मात्र भी नहीं। तेरा स्वभाव है कुछ इस प्रकार का लक्ष्मण, तू बहुत जल्दी रुष्ट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तुझे। तेरा गुस्सा तो उचित होता है, तेरे गुस्से को राम भी अनुचित नहीं मानते, कोई अनुचित नहीं मानता, हम भली भांति जानते हैं तेरा गुस्सा बहुत उचित गुस्सा है, लेकिन वहां जाके ये उचित गुस्सा भी ना करना, ये रोष भी नहीं आना। कहीं तू सोचे ये राम जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं या सीता जो मुझे आज्ञा दे रही है ये अनुचित है, ये प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है, तो इसके बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति कभी स्वप्न में भी लक्ष्मण ना आए। स्वभाव है देवियो सचनो लक्ष्मण का इस प्रकार का। आप देखिए मंथरा जिस वक्त कैकेयी के पास गई है तो कुछ उल्ट पुल्ट सी बात कर रही है। कैकेयी ने सबसे पहले पूछा, क्या लक्ष्मण ने डांटा है तुम्हें, क्यों उल्ट पुल्ट बात कर रही है। मानो लक्ष्मण से प्रायः मंथरा को डांट पड़ती रहती है, औरों को भी डांटते होंगे, वह किसी को स्पेयर नहीं करते, कुछ एक दो को छोड़ के लक्ष्मण ने किसी को स्पेयर नहीं किया। बहुत बड़े आलोचक हैं श्री रामायण जी के, कभी समय लगा तो चर्चा इस बात पर करेंगे। आज रोष नहीं आना, गुस्सा नहीं लाना, वहां इनके श्री चरणों में विराजमान रहना, इनकी सेवा करते रहना, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, इष्ट कहें अनिष्ट कहें, ये तेरा जानने का विषय नहीं है, तू केवल सेवा कर। उन्होंने ठीक कहा है या गलत, ये तेरा जानने का विषय ही नहीं है, तूने इनकी सेवा करनी है, जो ये कहें उसे करना है, चाहे राम कहें चाहे उनकी अभिन्न जगजननी माँ सीता कहे हैं, तुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है, इनकी सेवा करनी है, रोष स्वप्न में भी ना आए। कहीं तो ये सोचने लग जाए जैसा मैं राजकुमार वैसा ही ये भी राजकुमार, मैं इसकी सेवा क्यों करूं, इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है। स्वप्न में भी लक्ष्मण तेरे अंदर ईर्ष्या का भाव जो है वह आना चाहिए। ठीक है माते, कहीं ये समझने लग जाए ये सेवा मुझे मिली है इसलिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ होगा। भरत को क्यों नहीं मिली, शत्रुघ्न को क्यों नहीं मिली, इतने बड़े बड़े महान मंत्री इत्यादि हैं वहां पर, उनको क्यों नहीं मिली, कहीं ये मद भी तेरे अंदर स्वप्न में ना आए। लाख लाख शुक्र करना उस परमेश्वर का, ये राम की कृपा है कि ये तुझे सेवा मिली है। वह किसी को भी दे सकते थे, भरत को बुलाया जा सकता था इस सेवा करने के लिए, वह भी तैयार होता, वह अभी भी तैयार है, आपने देखा आज पड़ा है, वह भी तैयार है, मैं भी यही रहूंगा महाराज, जहां लक्ष्मण रहेगा मैं भी वही रहूंगा, वह भी सेवा करने के लिए तैयार है, कहीं तेरे अंदर ये मद भूल से भी स्वप्न में भी तेरे अंदर ना आए। अपनी ऐसियत ना भूल जाना, अपना वास्तविक स्वरूप ना भूल जाना लक्ष्मण, तेरे अंदर मोह ना आए। ये मोह जिसे आप जानते हो वह तो ये है ना, अपने घर गृहस्थी के लोग जो हैं इन्हीं के लिए सब कुछ करना, इन्हीं का अपमान सहना, इन्हीं के लिए चोरी करनी, इन्हीं के लिए बेईमानी करनी, इन्हीं से राग रखना, इन्हीं से सब कुछ करना, इसे मोह कहा जाता है, सारे संसार को छोड़ के। लेकिन संत महात्मा एक मोह की बड़ी गहरी परिभाषा बताते हैं, वह ये जो सत्य को असत बताए वह मोह, और जो असत को सत्य बताए वह मोह। विभ्रांति की स्थिति इसे मोह, उल्ट पुल्ट वाली स्थिति इसे मोह। कहीं तो भूल जाए अपने स्वरूप को तो ऐसा ना करना, अपनी ऐसियत को लक्ष्मण नहीं भूलना। क्या है तेरी ऐसियत, तू एक नौकर है और वह तेरे स्वामी है। इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से मेरे राम और सीता की सेवा करना कि उन्हें कभी भूल से भी अयोध्या की याद ना आए, जहां रहे वहीं अयोध्या स्थापित कर देना, उन्हें कहीं भूल से भी हमारी याद ना आए या अयोध्या की याद ना आए। हर वक्त मीठा बोलना, मुस्कुराते रहना, कभी सेवा करते हुए उड़ना नहीं, मानो माँ सुमित्रा ये हमें बोध दे रही हैं लक्ष्मण के माध्यम से कि एक सेवक को, एक परमात्मा के नौकर को किस प्रकार का होना चाहिए। आइए भक्तजनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो माँ सुमित्रा उपासना द्वारा दी गई शिक्षा थी लक्ष्मण को, आशीर्वाद लेके चले गए। आज भरत जी लौट आए, ननिहाल गए हुए थे लौट आए, उनकी साधना आरंभ होती है, उनकी साधना का शुभ आरंभ तो हो गया। जब व्यक्ति को विरोध आने लग जाए, दंड पड़ने लग जाए, तो समझना चाहिए कि साधना का शुभ आरंभ जो है वह हो गया है। कौशल्या से डांट पड़ी, उसके बाद मां की गोद मिली, मानो मां ने आशीर्वाद दे दिए, ज्ञान ने आशीर्वाद दे दिए, और क्या चाहिए। भरत जी महाराज ज्ञानी हैं, कर्मयोगी भी हैं, लेकिन उन्होंने साधना का मार्ग ना ज्ञान ही चुना है ना कर्मयोग ही चुना है, तो फिर क्या चुना है। आइए देखते हैं। साधना का शुभ आरंभ तो कौशल्या की डांट से ही आरंभ हो गया, बेचारा रो रहा है, बिरख रहा है, अनेक सारी ज्ञान की बातें कही हैं, मैं भागीदार नहीं हूं, मैं कभी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूंगा कभी कि मुझे ये राज्य मिले, मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरी ये योजना नहीं है। ये माँ को वह स्पष्ट कर देता है, और माँ उसे अपनी गोद में बिठा के बहुत पुछ प्यार करती है, जैसा माँ कौशल्या को करना चाहिए था ऐसा ही उसने किया। अंत अंत्येष्टि हो गई है। भरत जी महाराज अपना निर्णय सबको सुना देते हैं। अयोध्या के राजा राम ही हैं, राम ही होंगे। आप कभी ये सोचो कि मैं कभी राजा बन जाऊंगा या राजा हूं तो ये आपकी भूल है महाराज। मैं कभी राजा नहीं था और ना ही मैंने कभी अयोध्या का राजा बनना है। इसके राजा राम ही हैं और वही राज रहेंगे। यदि आप मेरे ऊपर दयालु हो, कृपालु हो महाराज, आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया है, सबको कहते हैं, तो चलो मेरे साथ सभी राजा राम को वापस बुला के लाते हैं। वही है राजा, तो वापस जाने की तैयारी जो है वह उनको करनी चाहिए। वापस लाने की तैयारी कैसे उनको वापस लाना है। भरत जी महाराज की साधना यात्रा आरंभ होती है। साधना तो पहले से आरंभ हो गई है लेकिन यात्रा यहां से आरंभ होती है। महर्षि विशिष्ट, रानियां इत्यादि तो रथ पर चले गए हैं। लक्ष्य तो एक ही है ना भक्त चरों सबका। अयोध्या वासी, राजघराने के लोग जितने भी जा रहे हैं, लक्ष्य तो सबका एक ही है, राम मिलन, राम के दर्शन। यात्रा भिन्न भिन्न ढंगों से की जा सकती है। महर्षि विशिष्ट, रानियां इत्यादि रथ पर बैठ जाती हैं। मानो ये लोग वह हैं जो धर्माचरण करके तो प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। धर्माचरण करके, रथ धर्म का प्रतीक होता है, ये धर्म के अनुकूल चल के, धर्म के अनुसार चल के तो ये प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं। इनको रथ पे बिठा दिया जाता है। कुछ लोग घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। घोड़े तो बड़े मुंह जोर होते हैं। यदि घोड़े की लगाम आपके हाथ में ठीक ढंग से नहीं है, उनके लगाम पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो वह आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में जाके गिरा देंगे। मानो ये योग के साधक हैं जो घोड़ों पर सवार होके चले हैं। कुछ लोग हाथी पर भी बैठ गए हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं वे हाथी पर, हाथी ज्ञान का प्रतीक है, वे हाथी पर बैठ के भी चल पड़े हैं। भरत जी महाराज इन तीनों साधनों में से किसी को नहीं अपनाते। मेरे पास कोई साधन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया कि वे रथ पर बैठे हैं, रथ पर गए हैं वे। रामचरितमानस में भी इस प्रकार का वर्णन आता है, पर कब बैठते हैं? जब मां कौशल्या कहती है, भरत यदि तू रथ पर नहीं बैठेगा तो ये इतने सारे लोग जो साथ जा रहे हैं इनको भी पैदल चलना पड़ेगा, और इसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये इतना रास्ता पैदल कैसे चलेंगी? मेहरबानी करके मेरी आज्ञा का पालन कर, रथ पर बैठ जा। मां को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भरत रथ में बैठ जाते हैं। मन नहीं है। जिस लंबी दूरी को मेरे राम ने पांव से तय किया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे मस्तक द्वारा तय करूं। पांव द्वारा नहीं, रथ द्वारा नहीं, या किसी और साधन द्वारा नहीं। इन तीनों को नहीं अपनाया, साधन होते हुए भी साधन को नहीं अपनाया, एक निस्साधनता की स्थिति उसके अंदर आ गई है, जिसे शरणागति कहते हैं, जिसे समर्पण कहते हैं। भरत जी महाराज ने इस मार्ग को अपनाया है, शरणागति का मार्ग अपनाया है, समर्पण का मार्ग अपनाया है। एक विधवा कहे कि मैं अब ब्रह्मचारिणी बन गई हूं, तो ये ब्रह्मचारिणी का व्रत नहीं है, तो विधवा हो गई है, उसके पास भोग सामग्री रही नहीं है। साधन होते हुए भी यदि कोई निस्साधन हो जाता है, ग्रस्त होते हुए भी यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो बहादुरी है। ऐसा नहीं है, भरत जी महाराज के पास साधन नहीं है, सब साधन है, लेकिन उनकी मान्यता है मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास शिक्षा है, ना मेरे पास दीक्षा है, ना मेरे पास भक्ति है, ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास प्रेम है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा, मैं हाथी पर नहीं बैठूंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई गुण नहीं है,
मैं दुर्गुणों की खान हूं, मेरे कारण ही तो सारा अनर्थ हुआ है, सारे पाप का भार भरत जी महाराज अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं। मैं ककई को भी दोषी नहीं ठहराता, भले ही मैंने गाली निकाली है, ककई ने आखिर किया है सब कुछ तो मेरे लिए ही तो किया है, मैं इस अनर्थ का कारण सब कुछ अपने सिर के ऊपर भरत जी महाराज ले रहे हैं। मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, बस एक ही आसरा है, इसे राम कृपा कहा जाता है। जब व्यक्ति सारे साधनों को छोड़ के एक राम कृपा पर निर्भर रहे, एक राम भरोसे रहना शुरू कर दे, मेरी साधना यही है कि मैं राम भरोसे रहूं, मैं राम आश्रय रहूं, तो इसे शरणागति कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं, इसे सरेंडर कहते हैं। एक राम भरोसे, राम कृपा। राम कृपा ऐसे ही व्यक्ति में अवतरित होती है, प्रेम का प्रतीक है, भक्ति की प्रकाष्ठा है शरणागति समर्पण। जब व्यक्ति इस प्रकाष्ठा को पहुंच जाता है तो परमेश्वर अति दयालु अति कृपालु उसके प्रेम को देख के तो अपनी कृपा को उसमें उढ़ेल देते हैं, ये परम प्रेम बन जाता है, ये पराभक्ति बन जाती है। पराभक्ति इसे ही कहते हैं, जब साधक का प्रेम और परमेश्वर की कृपा का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे पराभक्ति कहा जाता है। परमेश्वर की कृपा तो सब पर है, लेकिन अवतरित उसी पर होती है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ता है, दूसरे हृदय में ये अवतरित नहीं होती, भले ही ये सब पर है, अवतरित उसी पर होती है। भरत जी महाराज चल पड़े। आखिर भक्तजनों, ये राम राज में ये जो व्यवधान आया है, आया क्यों है, ये बाधा जो आई है, आई क्यों है? संत महात्मा कहते हैं, भरत है प्रेम का सागर और परमात्मा श्री राम है कृपा के सागर। भक्त और भगवान की होड़ लगी हुई है आपस में, भक्त चाहते हैं कि मुझे कोई ना जाने, सब कुछ भगवान है, और भगवान कहते हैं बेशक मुझे कोई भूल जाए लेकिन कोई मेरे भक्त को ना भूले। दोनों में होड़ लगी हुई है। भरत जी महाराज 14 वर्ष के लिए ननिहाल चले गए, ताकि आप याद करो, संभवतः इन दोनों रामायणों में नहीं, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि ककई का विवाह राजा दशरथ के साथ इसी शर्त पर हुआ था, जो मेरी कोख से, जो ककई की कोख से जन्म लेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। भरत जी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 14 वर्ष के लिए ननिहाल चले गए, ये बाद में सब कुछ हो जाएगा, मुझे लोग भूल जाएंगे, और हुआ भी ऐसे। ककई भी तैयार है, ककई भी जानती है कि ये व्रत ये हुआ हुआ है, ये प्रण इस प्रकार का हुआ हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है इस प्रकार का, लेकिन वह राम प्रेम में इतनी प्रभावित हो गई हुई है, इस प्रकार की हो गई हुई है, इतनी बह गई हुई है कि वह भी इस बात को भूल गई हुई है कि भरत ने राजा बनना है। भरत जी महाराज 14 वर्ष के लिए वहां चले गए, राम जी महाराज 14 वर्ष के लिए इधर आ गए। तू चाहता था कि मेरी महत्ता प्रकट हो और 14 वर्ष का निकाल रहा, तुझे सफलता मिली है, मैं चाहता हूं कि तेरा प्रेम प्रकट हो, इसलिए मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं। प्रेम का सागर एवं कृपा का सागर चित्रकूट में मिलने जा रहे हैं, दोनों वहां मिलेंगे जाके। चित्रकूट पहुंचते ही इससे पहले भरद्वाज ऋषि का आश्रम आता है, निषाद से होते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भरत जी महाराज
महर्षि भरद्वाज के चरणों पर अपना शीश नवा देते और रखे रखते। शर्मिंदगी है बड़ी भारी, बड़ा भारी संकोच है, अपना सिर उठाते नहीं। भरद्वाज मुझे अवश्य पूछेंगे, क्या तू ही वह भरत है जिसके कारण ये सारा अनर्थ हुआ है? क्या तू ही उसको माता कैकेयी का पुत्र है? संकोचवश अपना सिर जो है, अपना मस्तक उनके श्री चरणों से उठा नहीं रहे। अरे मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ सुन लिया है, और संकोच में डूब जाते हैं। मानो ये मुझे बिना पूछे ही इन्हें पता लग गया हुआ है कि वही मैं हूं जिसके कारण ये अनर्थ हुआ है। अपना मस्तक और निभाए रखते हैं, उठाते नहीं। अरे भरत, तू अपराधी नहीं, मस्तक उठाया है, अपराधी तो कैकेयी है। अरे वास्तव में तत्व दृष्टि से देख, तू तो बड़ा ज्ञानी है, ध्यानी है, समझदार है, धर्म के सार मर्म को तू समझता है। वास्तव में दोष के कई का भी नहीं है। तो महाराज, महर्षि भरद्वाज कहते हैं दोष तो उस सरस्वती माता का है जो कई की जबान पर बैठ गई और जिसने ये सब कुछ करवाया। भरत जी महाराज बड़े चकित। महर्षि, सरस्वती माता का नाम लेते बुद्धि विमल हो जाती है, और आप कहते हैं माता सरस्वती के कारण कैकेयी की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। आगे जाके जब भरत जी महाराज चलते हैं उनको ले जाने के लिए, देवता लोग एक बार फिर मां सरस्वती के पास जाते हैं और जाके हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माते जैसा काम पहले किया था वैसा ही आपको अब भी करने की आवश्यकता है। कहीं मां ये भरत राम को लाने में सफल हो गया तो हमारे सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मां सरस्वती के पास देवता लोग फिर गए हैं एक बार और जाके ये प्रार्थना करी है जिस प्रकार से ये आपने अभी तक किया है, मेहरबानी करके अब ये एक और कारनामा करो। ये किसी भी ढंग से भरत को सफलता नहीं मिलनी चाहिए कि वह राम को वापस ले आए। जानते हो देवियों सज्जनों, मां सरस्वती ने क्या कहा है? वह कहती हैं, क्या आप सोचते हो मैंने आपकी बात सुन के तो कैकेयी की जबान पर विराजमान हो गई थी? आपके कहने पर वह जाके वहां बैठ गई थी? नहीं, अरे कठपुतली जो है वह नाचती है तो वह दर्शकों के इशारों पर नहीं नाचती, उनके कहनों के अनुसार नहीं नाचती, वह नाचती है जिसके हाथ में उसकी डोरी है। मेरी डोरी किसके हाथ में? तब कुछ कीन राम रुक जाए। जब मैंने राम के रुख को देखा, जब मुझे राम ने जो मेरे कर्णधार हैं, जो मेरे सूत्रधार हैं, जिस वक्त उन्होंने मुझे इशारा दिया, उनका रुख मैंने पहचान के, तब मैंने कैकेयी की जबान पर अपने आप को निवासित किया। अब भी मैं आपके कहने के अनुसार नहीं करूंगी, अब भी मुझे मेरे मालिक जब इशारा करेंगे तो ही